क्रांतिकारी की बनावट में एक विराट व्यापक प्रेम की सामर्थ्य तो आवश्यक है ही, साथ ही उसमें एक और नितांत आवश्यक अनिवार्य है, घृणा की क्षमता। एक कभी ना मरने वाली, जला डालने वाली घोर मारक, किंतु इतना सब होते हुए भी एक तटस्थ सात्विक घृणा की क्षमता, यानी ऐसी घृणा जिसका अनुभव हम अपने सचेतन मस्तिष्क से करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम भस्म कर डालती है और पागल करके अपना दास बना लेती है। निहिलिस्ट लोग इस बात को समझते हैं। इन्होंने अपने सर्वभंजक आग्रणी उत्साह में घृणा को बहुत अधिक महत्व दे दिया था। वह उसे एक तेज शराब की तरह पीकर उसमें अपने व्यक्तित्व को भुलाकर उसे एक ज्वलंत आदर्श मान बैठे थे। यह उनकी गलती थी। उनके उत्साह का ज्वार था जो एक ऐसी लहर में उठकर आया था जो पहले तो बहुत दूर तक तीर पर चढ़ जाती है और फिर धीरे धीरे फेन के एक उपद्रव में छिपकर अपनी स्वाभाविक सीमा पर लौट आती है। किंतु फिर भी उन्होंने इस प्रखर बौद्धिक घृणा का महत्व समझा था और उन्होंने इसकी प्रेरक शक्ति का पूरा प्रयोग करके पूरा लाभ उठाया। और संसार इसे नहीं समझता। सामान्य जनता का सामान्य नैतिक विधान इसे अत्यंत ग्रहणीय गिनता है। उसके लिए घृणा एक अधोमुखी प्रवृत्ति है जो मानवता का विनाश करती है, जो इसके अतिरिक्त कुछ कर नहीं सकती। वे नहीं जानते कि इसे एक भावना में कितनी शक्ति है, कितनी युगांतकारी शक्ति, यदि उसका उचित और बुद्धियुक्त प्रयोग किया जाए। मैं उस दिन की कल्पना करता हूँ जिस दिन हमारे देश के, हमारे संसार के क्रांतिकारी कहने वाले व्यक्तियों में एक प्रखर किंतु शीतल बौद्धिक घृणा जागेगी और वे उससे डरेंगे नहीं, उसे अपनाएंगे और उसकी प्रेरणा स्वीकार करके संसार पर अपनी छाप बिठा सकेंगे, युगांतर कर जाएंगे और फिर भी एक नए युगांतकारी विद्रोह का बीज बोया जाएगा। क्योंकि विद्रोह अनंत है, नित्य है, क्योंकि उसके उपकरणों में प्रेम के बाद सबसे बड़ा, सबसे अमोघ अस्त्र है यही बौद्धिक घृणा, सिवाय यातना के, घोरतम यातना के। क्योंकि यातना भी एक उच्च कोटि का और बहुत पवित्र अस्त्र है। पर मैं यातना की बात क्यों लिखूं? किसी भवन का और विशेषता लैंडस्केप में उस भवन की स्थिति का वर्णन करने के लिए उसे देखना पड़ता है। केवल समीप खड़े होकर बाहर से ही नहीं, किंतु उससे बहुत काफ़ी दूर हटकर भी। तब मैं कहाँ जाकर यातना को देखूँ, कहाँ से उसे माप तोल कर परख कर उसका मूल्य और महत्व आंकूँ। तब से मुझे जान पड़ता है कि मेरे मन को दो टुकड़े हो गए हैं। कभी कभी तो दो से अधिक जान पड़ते हैं, किंतु दो तो अवश्य हो गए हैं। और जहाँ तक मैं स्वयं सोच पाता हूँ कि इस ना मरने वाली दरार का कारण वह एक कल्पित चित्र ही है जो मेरे मन में उस रसोई घर की दीवार को भेद कर देखा था, उस समय जबकि माँ कह सक रही थी, मैं तो इसका भी विश्वास नहीं करती। इस दरार का कोई कारण हो सकता है, कोई और समाधान हो सकता है, इसका निर्णय मनोविज्ञान वेता ही कर सकते हैं। किंतु इतना मैं जानता हूँ कि उसका अस्तित्व है जरूर, क्योंकि कभी कभी मुझे स्वयं ज्ञात होता है कि मेरे मन के वे दोनों खंड घोर युद्ध कर रहे हैं, मेरी चेतना पर राजस्व पाने के लिए लड़ रहे हैं। और ऐसा भी होता है कि कभी कभी का प्रभाव बढ़ जाता है कभी किसी का, और इसके फलस्वरूप मेरे कार्यों में एक प्रतिकूलता का, असंबद्धता आ जाती है, जिसे मुझे बाह्य रूप से जानने वाली नहीं समझ सकते, किंतु जो मेरे व्यक्तित्व में आकर एक भूत हो जाती है, हल हो जाती है। कभी ऐसा होता है कि किसी भी खंड की प्रधानता नहीं होती, तब वे मन क्षेत्र के विभिन्न केंद्रों पर अधिकार करते हैं। और यदि हाथ के एक नियंत्रण में होते हैं तो मुख दूसरे के, या चेतना के एक के तो शारीरिक परिचालन के और दूसरे के। तब मैं ऐसा ही दिखता हूँगा जैसा कोई मशीन जिसके पुर्जे उलझ गए हों किंतु जिसकी गति बंद ना हुई हो। मैं पागल तो नहीं हूँ, किंतु कभी कभी सोचता हूँ कि मुझे पागलपन के इस ओर रखने वाली, सीमित कर देने वाली रेखा कितनी पतली है। शायद उतनी ही पतली जितनी घृणा और प्रेम में, या क्रूरता और यातना में, या स्नेह और वैराग्य में होती है। क्योंकि ये कभी अलग नहीं किए जा सकते। जहाँ प्रेम जितना उग्र होता है, वहाँ वैसा ही तीखी घृणा भी होती है। क्रूरता में केवल यातना दी ही नहीं जाती, स्वयं पाई भी जाती जाती है। और स्नेह में स्नेही अपने को ही नहीं भूलता, स्नेह के पात्रों को भी भूल जाता है। स्नेह एक ऐसा चिकना और परिव्यापक भाव है, उसमें व्यक्तित्व नहीं रहते। स्नेही अपने स्नेह पात्र को कभी वह याद नहीं करता, क्योंकि वह उसे कभी भूलता नहीं। वह उससे इतना अभ्यस्त हो जाता है कि उसे कभी ध्यान नहीं होता कि इसे भी देखूं, इसे देखने के लिए एक अलग, एक विशेष प्रयत्न करूं। जैसे कि एक भली भांति प्रकाशित दृश्य को देखकर हम प्रकाश को अलग नहीं देखते, किंतु एक अंधियारे दृश्य को देखकर अथात पूछ बैठते हैं कि इसका कौन सा अंश प्रकाशमान है। पैराग्राफ चेंज। किसी ने मुझे फूल भेजे हैं। यदि धूप और छाँव एक दूसरे के परिपूरक है, तो क्यों इन फूलों को देखकर यह भावना नहीं जागती? क्यों इस कोठरी के 5 कदम लंबे और 3 कदम चौड़े लोहे की कड़ियाँ से घिरे हुए अंधकार के टुकड़े में मुझे इन फूलों को देखकर संपूर्णता का भान नहीं होता? क्यों इनके बिखरे बिखरे सफ़ेद सौंदर्य में खुली खुली सी पीली आंखें देखकर मुझे अत्यंत आपूर्ति, अखंडता, शून्यता का अनुभव होता है? क्यों मेरे अंदर एक उग्र विद्रोह, एक सर्वनाशक जिज्ञासा जागती है? 4 लाइन। भाड़ 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 कारा, आघाते आघात कर, अरे आज की गान गए छे पाखी, अच्छे से रविर कर। जिसने ये फूल भेजे हैं, वह क्या समझती होगी? उसने मुझे क्या भेज दिया? क्या मुझे झुलसाए डालता है? पर जिसके लिए मैं फिर भी उसका कृतज्ञ हूँ। वह मेरा शिष्य थी, पर मैं उसका गुरु नहीं था। मैं केवल पढ़ाता ही था, पर वह मुझे कभी गुरु नहीं समझ पाई। मैं उसके लिए मैं था, एक बड़ा सा भाई, किंतु ऐसा भाई जिससे प्रेम किया जा सके, जिस पर झुका जा सके, जिसके आधार पर स्वप्न बुने जा सके, और जो उपेक्षा से उन्हें तोड़ दे। मैं पढ़ता था, बड़ी मेहनत से पढ़ाता था, पर वह कुछ भी नहीं सीख पाती थी। नित्य मैं उससे पूछता, पिछला सबक याद किया है? तब वह सिर झुकाकर एक निरर्थक सी मुस्कुराहट लेकर चुप रह जाती थी। तब मैं बार बार पूछता था, फिर डांट देता था। वह कहता था, ऐसे पढ़ाई नहीं हो सकती, और पुराने सबक को दोहराने बिठा देता था। तब वह बिल्कुल नहीं पढ़ती थी, किताब सामने रखकर बड़ी मननशीलता से उसे देखती रहती थी। उन आँखों से बड़ी बड़ी बूंदों से भरी हुई होती थी और कुछ भी नहीं देख सकती थी। तब मैं स्नेह के स्वर में कहता, अच्छा आज आगे पढ़ा देता हूँ, कल दोनों सबक याद कर लेना। और वह पढ़ती थी, और दूसरे दिन फिर वही हाल, कल दोनों सबक याद कर लेना। और वह पढ़ती थी, और दूसरे दिन फिर वही हाल। एक दिन मुझे बहुत क्रोध आया, तब उसकी आंसू भरी आंखें देखकर मैंने झुलसाए हुए स्वर में कहा, पढ़ती लिखती तो कुछ हो ही नहीं, और कुछ कहता हूँ तो रो रो कर पढ़ती हो। हटो, कल से मैं नहीं आऊँगा। मैं उठ खड़ा हुआ। तब वह दीन स्वर में बोली, मुझे फुर्सत कहाँ मिलती है? अम्मा सारे दिन तो 25 काम बताती रहती है, गुरु कैसे मान जाए? अम्मा भी आई, उनसे उसे भी पूछा, इसे कितना समय पढ़ने के लिए मिलता है? सारा दिन तो किताब लिए बैठे रहती है, मैं तो पढ़ाई के डर से कभी कुछ कहती भी नहीं। क्यों, ठीक नहीं पढ़ती है क्या? मुझे कहना सच ही चाहिए था, पर मैंने कहा, नहीं पढ़ती तो है, पर थोड़ी देर से पढ़ा करे तो अच्छी बात हो। वह चली गई। तब मैंने फिर उससे पूछा, क्यों, वह क्या कहती? किताब सामने रख कर कितने देर स्वप्न देखे जा सकते हैं, इसकी भी कोई सीमा है? मैंने और कठोर स्वर में कहा, क्यों, अब ध्यान से पढ़ोगी? तब मैंने पढ़ाने लगा। तब एक दिन ऐसा आया, मैं उसे पढ़ाने नहीं गया। 2-3 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, चौथे दिन मैंने उसके पिता को पत्र लिख दिया कि मैं नहीं पढ़ा सकूंगा। उन्होंने दूसरे ही दिन एक चेक मेरे नाम भेज दिया। कहानी समाप्त हो गई, पर दूसरे दिन उनका नौकर, एक छोटा सा लड़का, मेरे पास आया और बोला, बीबी जी पूछती थी पढ़ाने नहीं आइएगा। मैंने डपट कर कहा, कौन बीबी जी? छोटी, उन्होंने बुलाया है। मैंने फिर पूछा, शीला ने? हाँ। उसे शायद पता नहीं था कि पढ़ाई कैसे समाप्त हो चुकी है। मैंने कहा, उनसे कहना नहीं आ सकता, उसके पिता ने पढ़ाई बंद कर दी है। वह चला गया। मुझे यह विचार नहीं हुआ कि मैं कैसी कायरता से झूठ बोला हूँ। मैं यही सोचता रहा कि मैंने विजय पा ली है। उस विजय ही मेरे में ही हार है। यदि मैं उस सच से ही कहला देता कि मैंने ही इनकार किया है, तब शायद वह अपने को अन्याय की भागी समझकर ही कुछ संतावनी पाती। मैंने उसके लिए भी स्थान नहीं छोड़ा, और तब से उसकी उलहना भरी छाया मेरे साथ साथ आती है और रोती सी कहती थी, झूठे झूठे। मैं इससे बचकर भागता हूँ, भागता आया हूँ, और अब भी फूलों की ओर देखकर सोच रहा हूँ, इन मुरझाए हुए फूलों से कहाँ भागूँ, पर क्यों भागूँ? शीला, मुझे धोखा नहीं दिया, अपने को अब तक अवश्य धोखा देता आया हूँ। मैं जो झूठ बोला था, उसने तुम्हें नहीं भुलाया, मैं ही उसमें भुला था। पर आज मैं अपनी भूल जाना गया हूँ। आज मैं तुम्हें कष्ट देने वाला तुम्हारा भाई, जो तुम्हारी श्रद्धा की कृतज्ञता से स्वीकार करता है, जो अपनी लज्जा भुला कर कहता है कि उसने झूठ बोलकर अपने को तुमसे नहीं, अपने आप से छिपाया था, यही उसका प्रतिदान है, जो तुम्हें अब तक नहीं मिला, जो शायद अब तुम्हें कभी नहीं मिल सकता, किंतु जिसे वह आज चुकता कर चुका है। जब तक फूल ताजे थे, तब तक यही नहीं दिखता था कि यह कैसे बंधे हुए हैं। मैंने इन्हें अपनी कोठरी के जंगले से बांध दिया था, पर उन्हें बांधने वाला फीते के टुकड़ा नहीं दिखता था। काले लोहे के चिकसों के साथ लगे हुए ये सफ़ेद कोमल फूल एक बड़े अमूधर सत्य की याद बड़े मधुर ढंग से दिला देते थे। आज वह फीता दिखता है, उसके अपरिवर्त फंदे से फूल चूक चुके हैं, अपना स्मारक भर गए हैं और विवश से लटक रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि किसी चीज़ की जानी किसकी, कह रहे हैं, वासना नश्वर है, मुरझा जाती है, और तब प्रेम तंतु ही जीवन की स्थिरता बनाए रखता है, या शायद उससे उल्टा। कह रहे हैं, जब प्रेम मर जाता है और वासना उसके शव को उठाए उठाए फिरती है, और वह उसने अपने को धोखे में छिपाना चाहती है। कह रहे हैं और कुछ याद दिला रहे हैं, किसी और इंगित कर रहे हैं। रम्य टटी रावी का एक तट, जो एक और ऐसा भी रम्य नहीं है। तट पर छोटी झाड़ियाँ और ठूंठे वृक्षों का घना जंगल, खींची हुई आह की तरह गर्म और निस्तब्ध रात, ऊपर पड़े पेड़ों की सूखी छाकाओं में उलझा हुआ एकाध तारा, नीचे मरे हुए और धूल हुए पत्तों की सूखी आहों की भाप, और सामने एक बिखरा हुआ शव। उसके दोनों हाथ कटे हुए हैं, एक पैर कटा हुआ है, पैर खुल सा गया है और उसमें से अंतड़ियां बाहर गिरी पड़ी रही है। फटी फटी आंखें ऊपर शाखों के जाल को भेद कर देख रही है किसी तारे को, और मुंह की बिगड़ी हुई दर्द भरी मुस्कुराहट लिए हुए हैं। उसे मेरे देर को हो गई, जिस वक्त एक भयानक विस्फोट सा एक मानव विभूति टूटे हुए स्तंभ की तरह गिरी। उस वक्त वहां 1-2 दशक थे, किंतु जब वह मरा, तब उसके जीवन की उलझन को सुलझाने में उसका सहायक कोई नहीं था। वह गए थे सहाय प्राप्त करने, एक ही वहीं छोड़कर, पर रात होने को आई और उसके रुके हुए प्रतिष्ठान प्राण अधिक नहीं सह सके, तब वह अंतिम प्रहरी ढूंढने चला। और जब वह उन्हें ढूंढ कर लाया, जब वह सब वहां पहुंचे उसे उठा ले चलने के लिए, तब वह खो गया था। अपने दुख और दर्द की, अपनी आशा और क्रियाशीलता की स्मृति स्वरूप वह विकृत मुस्कान छोड़कर चला गया था। वे 4-5 जन उस शरीर के पास खड़े रहे हैं। वह रो नहीं रहे हैं, आंसू नहीं बहा रहे हैं, वह अपने चिर संचित अरमान बहा रहे हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य एक विस्फोट का धुआं बनकर उड़ गया है। घने जंगल की शाखाओं के उलझे जाल में से धीरे धीरे छन कर निकल गया है, तड़प तड़प कर, किंतु चुपचाप एक भरी हुई मुस्कान छोड़कर उसे निविड़ एकांत में, जब एक अंतिम प्रहरी भी उसे छोड़कर चला गया था और उसकी अपनी अंतर्वेदना ही एकमात्र प्रहरी बनकर उसकी निविड़तम हताशा के क्षार पुंज पर ही व्यर्थ पहरा दे रही थी। उसे बीहड़ में उस फटी हुई आँख के अंधेपन के ने क्या देखा? यदि हम जान पाते, वे चार पांच उसके पास खड़े थे, कतार बांधे, सावधान मुद्रा में, सिर झुकाए हुए, किसी आदर की भावना से वे सब एक साथ ही उसे हाथ उठाकर नमस्कार करते हैं और बहुत देर तक वैसे ही रह जाते हैं। वे सब चुप हैं। इस दृश्य को पूरा करने वाली भैरवी उसके अंतराल में कहीं मुख स्वर में बज रही है। यही है कि उस कवि हृदय सिपाही को यंत्रयष्टि, उस विद्रोही को विद्रोह का अंतिम उफान। दृश्य फीका पड़ जाता है, एक निइसम श्वेत आकाश में पड़ा हुआ रह जाता है, केवल वह शरीर जमते हुए रक्त के एक छप्पड़ में। उसके दिनों और दो आकार, एक स्त्री और एक पुरुष, एक दूसरे को देख कर रहे हैं। उनकी आंखें नीचे पड़े हुए उस शव को नहीं देखती, उनके हृदय नहीं अनुभव करते हैं कि किसी भव्य पवित्रता की समाधि भ्रष्ट कर रहे हैं। वे मिलते हैं, बाहों से एक दूसरे को घेर कर बांधते हैं, आलिंगन करते हैं, और किसी दानवी भूख से और उसी शव के आर पार फिर भ्रम में देख रहा हूँ जंगले से लटके हुए सूखे हुए नरगिस के गुच्छे को और उसे घेरे हुए फीते के टुकड़े को। मानव के लिए झूठ सच और मक्कारी अत्यंत सहज है, क्योंकि ईश्वर ने मानव को अपना प्रतिरूप बनाया, और ईश्वर हमारे ज्ञान के सबसे बड़ा झूठा और छलिया और मक्कार है। नहीं तो जो चित्र मुझे दिखता है उसका क्या कारण है? क्या मानव इतनी नीचता और इतने ज्वलंत आत्मत्याग के आगे इतनी नीचता कर सकता है? जब मुझे याद आता है कि कैसी परिस्थिति में वह विस्फोट और मृत्यु हुई, और जब मैं सोचता हूँ कि उस समय जब वह वीर अपने बुझे हुए सपनों को अपनी बुझती जीवन ज्योति से भूख फूंक कर कुछ देर और जीवित रहने की चेष्टा कर रहा था, तब उसके आसपास कैसे कैसे षड्यंत्र हो रहे थे? मानव हृदय की ओछी ओछी कमजोरियों की आड़ लेकर कैसी कैसी नग्नताएं नाच रही थी। तब एकाएक अपने पर से और अपने किए हुए पर से विश्वास उठ जाता है कि क्या इस सब के भी प्रेरणा स्रोत ऐसे ही थे? मैं सोचता हूँ कि यद्यपि हमारा सिद्धांत इस बात को स्वतः मान लेता है कि मानव की प्रतिप्रेरणा किसी भौतिक जरूरत से उत्पन्न होती है, तथापि हम इस बात में भी अखंड विश्वास करते हैं कि मानव में कोई ऊर्ध्वगामी शक्ति है, कोई नैसर्गिक सत्प्रेरणा। इन दो परस्पर विरोधी मूल तत्वों का हल करना ही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। इसके हल हो जाने के बाद अन्य प्रश्नों का तो कोई विशेष महत्व रहता ही नहीं, पर यह का एक प्रश्न ही इतना बड़ा, इतना गूढ़ और इतना व्यापक है कि हम पद पद में इसके उदाहरण मिलते हैं। हम सारा जीवन इसके हल में बिता देते हैं और फिर भी समस्या वैसी ही रह जाती है। किंतु इतने सब बिखरे हुए प्रणयों की याद कर करके ना जाने क्यों दुख नहीं होता, क्यों विफलता और वंचना की भावना नहीं जागती? मुझ में उठता है एक क्रूर विद्रोह, इसलिए नहीं कि मैंने क्या खोया है, कितना कष्ट उठाया है, बल्कि इसलिए कि मैंने कितना दुख दिया है, किन किन भोले हृदय को कैसी कैसी कठोर चोट पहुंचाई है। क्या है मेरे जीवन की सिद्धि? क्या है इसकी स्मृति? सच झूठ शून्य शून्य शून्य, बल्कि शून्य से भी कम एक ऋण जिसे मैं पूंजी समझे बैठा हूं। पर या मैं क्या कर रहा हूं? क्या क्या इतनी बड़ी बड़ी चोटों पर यह क्षुद्र दया दिखाकर मैं उनकी पीड़ा को और नहीं बढ़ा रहा हूँ? क्योंकि बहुत गहरी चोट का एकमात्र मरहम होता है चोट पहुँचाने वाले की उपेक्षा दृष्टि। दया तो उसके घावों को खरोच कर खोल देती है। मैं क्या हूँ, मेरा ममत्व क्या है जिसके अंत के लिए इतनी शक्ति व्यय की जा रही है, इतना आयोजन हो रहा है? उस जीवन की सत्यता क्या थी? वायु में उड़ती धूल पर घींची रेखा और बस। नहीं हो सकता, मेरे इतने सब स्वप्न और नग्न नहीं हो सकते। भले ही मेरे जीवन नग्न रहा हो, मैं कुछ नहीं, पर मेरा कार्य कुछ नहीं, मेरा स्थायित्व मेरा नहीं, मेरी या विद्रोह श्रेष्ठा कहाँ जाएगी? मैं जो इतना अनवरत यत्न से संसार का या संसार में जहाँ तक मेरी पहुँच हो सकी है, मैं उसकी प्रत्येक वस्तु में घोर परिवर्तन, एक मौलिक क्रांति का आदर्श लेकर आया हूँ। वह क्या एक फांसी के फंदे में ही घुटकर मर जाएगा? मैं ना रहूँ, मेरा कोई चिन्ह भी ना रहे, पर क्या यह शक्ति भी नष्ट हो जाएगी? क्या इसकी दृप्ति का कंपन भी खो जाएगा? विज्ञान कहता है कुछ होता नहीं, कुछ होगा नहीं, पर जो कुछ हो चुका है वह भविष्य के अंत तक रहेगा, और जो होना है वह भूत के प्रारंभ से ही था। क्योंकि भूत और भविष्य कुछ नहीं है, क्योंकि काल भी कुछ नहीं है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की भांति गति एक की दिशा एक प्रकार है। तब मैं मर कर भी जीता रहूंगा और जीते हुए भी मर चुका हूँ। मुझे जीवन का मोह नहीं करना चाहिए, पर मैं ऐसा मोह करता कहाँ हूँ? मोह तो तब होगा जब इस जीवन की कोई सिद्धि होती, और मैं सोच रहा हूँ कि मृत्यु ही इसकी सिद्धि है। पर क्या विज्ञान यह भी तो कहता है कि जीवन एक ही बार मिलता है, और मानव जीवन का कोई भी अंश नित्य नहीं, मृत्यु में उसका संपूर्ण अवसान हो जाता है। कुछ भी नहीं रहता जो पुनः जन्म में पा सके, और शक्ति शक्ति भी नष्ट हो जाती है। नहीं, शक्ति नहीं नष्ट होती, केवल रूप बदलती है, पर शक्ति तो अकृतक होती है। और शक्ति और पदार्थ विभिन्न नहीं, एक ही कुछ को दो आकर, तब क्या आज जो मेरे विद्रोही शक्ति है वह कल किसी को बांधने के लिए लोह श्रृंखला होगी? किसी विद्रोही को जो कि मेरा ही भांति भविष्य को बदलना चाहता होगा, जो भविष्य अपने भविष्य के लिए बंधन हो जाएगा। हाय मानव के छोटे से मस्तिष्क, और हाय भाव के विराट सत्य। पर क्या इसी विचार की संतावना नहीं है? इसी से हमारे सारी गति और सारे विकास का तत्व, उसकी सिद्धि, उसकी सफलता नहीं है? इसकी अनंत नश्वरता, अनंत पुनः जन्म, अबाध परिवर्तन में, इस सिद्धांत में कोई दो क्षण एक से हो जाते हैं। प्रत्येक छोटे छोटे विपल में उसकी मृत्यु और उसके अगले विपल का उद्भव अवश्य भावी में है। मैं मरता हूँ क्योंकि मेरा जीवन केवल उस मरण की भूमिका है जिसमें लाखों लोक और करोड़ों आगामी जीवन निहित हैं। मैं अपने पहले बीते हुए असंख्य युगों का निचोड़ हूँ, एक निर्जीव धूमकेतु से इस पृथ्वी की जन्म की, उस पर अत्यंत प्राथमिक जीवन का उद्भव की, और उससे उत्पन्न अनेक विभिन्न जातियों के उद्भिज, अंडज, स्वदेज और पिंडज जीव जंतुओं की वसीयत की छाप मुझ पर है। पिछले करोड़ वर्षों से निरंतर उन्नत होते हुए निर्जाति के उच्चतम आदर्शों का केंद्रीभूत पुत्र भी मैं ही हूँ। इस दृष्टि से मैं जो कुछ भी हूँ, अपना कुछ नहीं हूँ, नया कुछ नहीं हूँ, किसी अत्यंत प्राचीन ग्रंथ का एक नया संशोधित, सर्वोधित और सटीक सत्यपन संस्करण हूँ, जिसके मूल लेखक का पता नहीं। और मैं नया हूँ, अपूर्व हूँ, मेरे जीवन का एक क्षण भी मेले कभी नहीं हुआ। मैं एक नई वस्तु हूँ, एक नई प्रतिज्ञा हूँ जिसे भविष्य पूरा करेगा, एक शिक्षा हूँ जो भविष्य के लिए रह जाएगी। नित्यता क्षणों की है, पर क्षण क्षण भंगुर है। मैं भी हूँ, मुझ में जो कुछ नतुनता है उसे मुझे इस क्षण में कह डालना है, क्योंकि वह भविष्य की वस्तु है। मैं उसे कहे बिना रुक नहीं सकता, और सोचने का समय नहीं। क्षण का अस्तित्व कितना, क्या डालूं अंतर्व्यथा को बहा डालूं, अंतर्वेदना को बिखेर दूं, अंतर्ज्वाला को लुटा दूं, आंतरिक अनुभूतियों को दान कर जाऊं, अपनी अंतःशक्ति की चिर संचित शिक्षाओं को, अपने अंतःकरण के उन्माद को, चला जाऊं, थका हूं, सो जाऊं, पर पहले इस एकमात्र अपने रहस्य को कह जाऊं जो निर्वंश विकास की मेरे नाम और मेरे निर्वंश विकास के नाम वसीयत है, अपने विद्रोह शक्ति की अपने की गाथा, जिसे अंग्रेजी में विल टू रिवॉल्यूशन कहते हैं। यहाँ 10 लाइनों की पंक्ति। मौन में कैसी कैसी स्मृतियां, ओरे कवि तोरे आज करचे उतला, झंकार मुखरा अई भुवन मुखला, अलछित चरण रे अकारण अवारण चला, निहारते निहारते चोल चंचर सुनी पदवनी, वृक्ष तोर उठे रणरिणी, नाही जाने केऊ रखते तोर उठे आज समुदे ढेऊ, कांपे आज अरनियर वेकालुता, मने आज पड़े सही कथा, युगे युगे ए सची चलिया, स्खलिया स्खलिया, चूपे चूपे हते रूपे, प्राण हते प्राणे निसते प्रभाते, जा किछु पे छे हाते ए सची करिया, छै दान हते दाने गान हते गाने। कहूँगा ज्यों ज्यों मैं अपने जीवन की कहानी को सोचता हूँ, उसकी एक एक बात को नापतोल कर उसकी विवेचना पर एक विद्रोही के जीवन में उसके महत्व पर विचार करता हूँ, त्यों त्यों उसके प्रति मेरा आदर भाव बढ़ता जाता है। इस जीवन में भी कुछ है, एक उत्ताप, एक ऊर्ध्वगामी दृप्ति, जो यदि विद्रोह की शक्ति नहीं तो विद्रोह शक्ति की उपासना सामर्थ्य अवश्य है। मुझे बहुत दिनों की बात याद आती है, कोई 10-11 वर्ष पूर्व की, तब मेरी आयु कोई 14 वर्ष की थी, शायद 15 की। तब मेरे अंदर सुलगता हुआ विद्रोह भाव अनेक स्थानों पर भटक कर घर लौट आया था। मैं अपने घर के विरुद्ध ही विद्रोह का आयोजन किया करता और अपनी व्यवस्था पर, अपनी अकिंचनता पर दांत पीस पीस कर रह जाता था। एक दिन ना जाने किस कारण मैंने घर छोड़ दिया, यह निर्णय मैंने कैसे किया, किन प्रेरणाओं से बाध्य होकर किया मुझे याद नहीं, किंतु जिस भावनाओं को लेकर मैं घर से निकला वह मुझे अभी याद है। मेरा अंतर उबल रहा था, मानो बाह्य दबाव को उठाकर फूट निकलेगा। मैं एक आहत अभिमान के लिए सोच रहा हूँ कि क्या इतने बड़े संसार में मेरे लिए ठोर नहीं होगा, और मैं मुड़ मुड़ कर घर की ओर ऐसे देखता हूँ जैसे उसे भस्म कर डालूंगा। इसे दर्प से और ऐसी आशा से भरा हुआ मेरे घर से निकला हूँ। मेरी पूंजी क्या है, एक छोटा बिस्कुट का पैकेट, एक डबल रोटी और अपने साधारण वस्त्रों के अलावा एक पुराना ओवरकोट जिसकी जेब में ये दोनों वस्तुएं रखी है। मैं घर से घूमने निकला हूँ और एक पहाड़ी पर खड़ा सोच रहा हूँ किधर चलूँ, कहाँ जाऊँ, कि भावना अभी नहीं जागी, क्योंकि या तो मुझे सूझा ही नहीं कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि कहीं जाने की ठोर ही ना हो। मैं बाध्य होकर किसी एक स्थान को नहीं जा रहा हूँ, मैं तो अनेक गमने दिशाओं में से स्वेच्छापूर्वक एक चुन रहा हूँ। मेरे पांव एक ओर चल पड़े, मैंने उनकी प्रेरणा पर चलता रहा। पहले 7-8 मील तक मुझे स्वयं नहीं ज्ञात हुआ कि किधर जा रहा हूँ, मेरा ध्यान ही इधर नहीं गया, वह अभी तक पीछे घर की ओर देख रहा था और कुढ़ रहा था, पर 10-11 मील आकर पूरे घर पर ध्यान के लिए बहुत दूर हो रह गया। तब उसे पथ की ओर देखा और पथ की आगे की ओर मुझे सूचित किया गया कि मुझे एक जलप्रपात की ओर ले जा रहा था, जिसको मैंने मानचित्र में और कल्पना में कई बार देखा है। मैं आजीवन ना लौटने की निश्चय करके घर से निकला हूँ, किंतु या तो विचार किया नहीं कि आजीवन इसकी बिस्कुट के पैकेट पर और एक डबल रोटी पर गुजर करना है, और धूप बहुत निकल आई है और भूत बहुत लगी है। मुझे पहला ही झरना जो मिला मैंने उसी के किनारे कपड़े उतार कर रखे और उस पे लेट गया, और जब शरीर का कुछ ठंडा हुआ तो मैंने जल में ही औंधे होकर बिस्कुटों को पानी में भिगो भिगो कर खाना आरंभ कर दिया। इसी प्रकार अपनी आधी पूंजी उसी समय समाप्त करके मैं फिर स्वप्न देखने लगा। उस समय का जब किसी को भी किसी प्रकार का अत्याचार नहीं सहना पड़ेगा, चाहे घर में चाहे बाहर। मैं पानी में से बाहर निकला और कुछ देर सुस्ताने के लिए कपड़े पहनकर और डबल रोटी सिरहाने लेकर लेट गया। जब नींद खुली तब दिन ढल रहा था। मैं घबरा कर उठा और जल्दी जल्दी चलने लगा, मानो कहीं जाना ही हो। चलते चलते अंधेरा हो गया, तारे निकल आए। मैंने देखा मैं कहुए के एक बगान में होकर जा रहा हूँ, पर जिस जलप्रपात की ओर जा रहा हूँ उसका कहीं चिन्ह भी नहीं है। मैं मील भर और चला और बगान समाप्त नहीं हुआ था। एक छोटे से झरने के पास पहुंचकर मैंने सोचा कि यही पड़ाव करना चाहिए, और शायद ही याद आया कि मेरे पास एक डबल रोटी भी है। पूंजी समाप्त हुई। मैंने ओवरकोट भूमि पर बिछाया और काफी के वृक्ष की एक उभरी हुई जड़ की तकिया बनाकर झिंगोड़ों का शोर चुनते हुए उसे सोने की चेष्टा करने लगा। पता नहीं शोर पहले बंद हुआ या मैं पहले सो गया, पर आधी रात में कहीं मेरा आँख खुली। मेरा शरीर ठुठुर गया था। मैंने कोट को निकाल कर ओढ़ लिया और सोने की चेष्टा करने लगा। झिंगुर चुप थे। मैंने सोचा कहीं दूर पर समुद्र सा गंभीर शब्द हो रहा है या जलप्रपात का शब्द था। कोट ओढ़ लेने से ठंड और अधिक लगने लगी। तब मैंने उसे आधा बिछाया और आधा ओढ़ा, और इसे विभाजन को पूरा रखकर निरंतर चेष्टा मैं किस तरह सवेरा कर दिया। जब जलप्रपात का दृश्य मुझे दूर से ही दिखा तब मैं सड़क पर ही बैठ गया और बहुत दूर से उसे देखा किया। सोचता रहा कि जीवन ऐसा होना चाहिए, सुप्रभ, स्वच्छ, संगीतपूर्ण, आरुद्ध, निरंतर, सचेष्ट और प्रगतिशील, घबरा कर के बंधनों से मुक्त और सदा विद्रोही। फिर धीरे धीरे उठकर उसके नीचे चल गया। उस दिन भर के मैंने ना जाने कितनी बार उस प्रपात का फेनिल पानी पिया, क्योंकि पानी से भूख मिटती तो नहीं, और जितनी बार मुझे भूख को याद आती पानी पी लेता। वह रात मैंने जलप्रपात के नीचे ही बितलाई। एक चिकनी और समतल और दिन भर छुप से तपी हुई चट्टान खोजकर उस पर सो रहा था, और जब रात में किसी समय वह चट्टान मुझे धोकर ठंडा हो गई तब मैं फिर से उसे बुंदे ओवरकोट को खींच तान कर लंबा करने की चेष्टा में सवेरा कर दिया। सवेरा हो जाने के बाद मैं भी उठा नहीं, सिकुड़ कर पड़ा ही रहा, जब तक कि धूप न आकर मेरे अकड़े हुए शरीर में एक स्निग्ध गर्माई नहीं फैला दी। उस समय तक मेरा वह क्रोध मिट चुका था, उफान शांत हो गया था। मैं एक विचारपूर्ण मुद्रा में उस समय प्रपात को देख रहा था और उसके जीवन में एक सुनित्य पा रहा था। सोच रहा था कि इसकी परिवर्तनशीलता में एक प्रगुण एक स्वरता है, इसकी निश्चित उन्मुक्तता में एक परस्वरता, एक भूखापन, और बार बार पानी पी पी कर अपने को अपने से छिपाए जा रहा था। दोपहर तक एक विचारशीलता भी चली आई। मुझ में एक ग्लानि उत्पन्न हुई, एक झुंझुलाहट सी। वह उस भावना से बहुत कुछ मिलती जुलती थी जिसमें प्रेरित होकर मैं घर से चला था, किंतु यह आज मुझे घर की ओर प्रेरित कर रही थी। उसमें क्षोभ था, पराजय थी, और मैं उसे छिपा ना सका। भूखे ने मुझे छिपने नहीं दिया। मैं उठा और घर की ओर चल पड़ा। रात कहीं राह में कटी और सवेरे घर में पहुंच गया। उस क्षोभ और पराजय को भी भुलाकर जीवन के प्रति एक नया आदर भाव लेकर, जो कि व्यथा और अनुभूति से उत्पन्न और पुष्ट हो गया था। मेरी तलाश सर्वत्र हो चुकी थी, केवल उस प्रपात की ओर जाने को किसी को ध्यान ही ना हुआ था। पिता ने मुझे कुछ नहीं कहा या भी नहीं पूछा कि मैं कहाँ गया था। उन्होंने मेरे प्रत्यागमन को चुपचाप स्वीकार कर लिया। उनमें एक विशालता थी जो अपने ही नहीं दूसरे को भी पराजय को भी सह सकती थी और जिसे मैंने बहुत दिन बाद पहचाना।